नमस्कार भारत, तारीख 12 दिसंबर, दिन बुधवार, मैं हूं मानसी दास। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कमल को हराया, मध्य प्रदेश में भी रोका भाजपा का रथ।
ये जीत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, किसानों की है, युवाओं की है, छोटे दुकानदारों की है।
कांग्रेस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल, राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री?
मुश्किल तो जरूर होगा, दोनों के जो समर्थक हैं उनको अब संभाल पाना, क्योंकि ये लड़ाई जो अब तक अंदरूनी रही है कहीं वो बाहर उभर के नहीं आ जाए तो ये कहीं ना कहीं खींचतान चले।
सुनेंगे विश्लेषण, कितना सफल रहा राहुल गांधी का नेतृत्व?
अपने नाम पे वोट लेने के काबिल अभी नहीं बन पाया, लेकिन पार्टी एक उसके पीछे एकजुट होकर खड़ी हो गई है, ये तो तय है, और वो समझदारी के निर्णय ले रहा है, ये भी तय है।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, विकास त्रिवेदी से। भारत के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने बहुमत हासिल किया। उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने कुल 26 सीटें जीती। फ्रांस के शहर स्थासबो में क्रिसमस बाजार के पास हुई गोलीबारी की घटना में 2 लोगों की मौत हुई है और 10 लोग घायल हुए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। एक चश्मदीद पीटर फ्रिड्ज ने बीबीसी को बताया कि हमलावर ने भीड़ पर लगातार गोलियां चलाई थी। आठ बजे के बाद गोलियों की आवाज सुनाई दी, लोगों ने भागना शुरू कर दिया। मैं पुख्ता तौर पर यह नहीं कह सकता कि मैंने जो सुना वो गोलियों की ही आवाज थी, लेकिन मैं जब एक किनारे में छुपा तो देखा ब्रिज पर एक आदमी गिरा पड़ा था जिसके सिर पर गोली लगी थी। ये गोलीबारी जहां हुई वहां आसानी से एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती। ये थे चश्मदीद पीटर के शब्द। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि पूर्व कनाडियाई राजनयिक मिशेल कोवरिक को हिरासत में लिए जाने पर वो चीन से जवाब चाहते हैं। कुछ दिन पहले ही चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे की एक बड़ी अधिकारी को कनाडा में हिरासत में लिया गया था। ताज़ा जानकारी के मुताबिक चीनी कंपनी की अधिकारी को कनाडा की एक अदालत ने जमानत दे दी है। ट्रूडो ने कहा कि वो चीन से सीधे संपर्क में हैं और इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाए जाने की फंडिंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े तेवर अपनाए हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों के सामने सीनेट और हाउस डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर और नैन्सी पॉलसी से कहा कि सीमा सुरक्षा के लिए वो जितना फंड चाह रहे हैं अगर वो नहीं मिला तो सरकार का कामकाज रोक देंगे। ट्रंप ने कहा कि ऐसा करके वो गर्व महसूस करेंगे। क्लिंटन प्रशासन में चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके लियोन पेनेटा ने इस टकराव को अभूतपूर्व बताया। इस देश के 9 राष्ट्रपतियों के शासन में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। मैंने इससे पहले कभी भी किसी राष्ट्रपति को मीडिया के सामने ऐसी हरकत करते नहीं देखा है। अगर आप वाकई मतभेदों को भुलाकर देश चलाना चाहते हैं तो ऐसा रवैया बिल्कुल असरदार नहीं होगा। ये थे लियोन पेनेटा के शब्द। ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे का कहना है कि यूरोपीय संघ के नेता ब्रेग्जिट के मुद्दे को सुलझाने को लेकर ब्रिटेन के साथ हैं। ब्रितानी संसद में टेरिजा मे को ब्रेग्जिट को लेकर यूरोपीय संघ से हुए समझौते पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने टेरिजा मे से मुलाकात कर कहा कि इस मुद्दे पर फिर से बातचीत नहीं की जाएगी। ब्राजीली पुलिस का कहना है कि साओ पोलो में चर्च के अंदर एक व्यक्ति ने 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। हमलावर ने लोगों पर गोली चलाने के बाद बंदूक खुद पर तानकर गोली चला दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सरकार का कहना है कि हमलावर ने ये हत्याएं क्यों की इस बारे में अभी साफ कुछ नहीं कहा जा सकता। नाइजीरिया में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों और उनके राजनीतिक दलों के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत फरवरी में होने वाले चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से होने के लिए मदद करने की बात कही गई है। नाइजीरिया में विपक्षी पार्टी पीडीपी के उम्मीदवार अकीतू अबूबकर ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। फोर्ड कंपनी के पूर्व 2 अधिकारियों को अर्जेंटीना में 10 और 12 साल की सजा सुनाई गई है। ये सजा 1976 से 1983 तक देश में लागू क्रूर सैन्य शासन के दौरान वामपंथी यूनियन नेताओं की जानकारी देने के मामले में सुनाई गई है। इन यूनियन के नेताओं का अपहरण और उत्पीड़न हुआ था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दाश का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। पांच राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनावों के नतीजे कल आए। दिन बेहद दिलचस्प रहा, कहें तो रात भी उतनी ही दिलचस्प रही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतों की गिनती का काम रात करीब 4 बजे तक चलता रहा। मध्य प्रदेश में तो अब तक 4 सीटों पर नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन ये जरूर तय हो गया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत यानी 90 में से 63 सीटें मिली हैं। राजस्थान में उसे 99 और मध्य प्रदेश में अब तक उसे 112 सीटें मिली हैं। तेलंगाना में मौजूदा के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस को फिर से सत्ता में वापस आने का मैंडेट मिला है, तो कांग्रेस की झोली से मिजोरम फिसला और वहां मिजो नेशनल फ्रंट को बहुमत मिला। चुनाव नतीजों पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुशी जाहिर करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है। सुनिए कुलदीप मिश्र की रिपोर्ट।
दोपहर बाद से ही मीडिया को राहुल गांधी का इंतजार था, लेकिन वो शाम 7:30 बजे के बाद मुखातिब हुए। शायद इसलिए भी क्योंकि तब तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार और जीत के बीच झूल रही थी। राहुल ने इन चुनावों में जीत को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ किसानों, युवाओं और छोटे दुकानदारों की जीत बताया।
ये जीत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, किसानों की है, युवाओं की है, छोटे दुकानदारों की है।
कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, जो मैं बहुत खुशी से कह रहा हूँ, जिसने पूरे देश को दिखा दिया कि वो है क्या। मैं बंद कमरों में आपसे कहता हूँ, बट मैं खुले कमरे में कह देता हूँ, आप बब्बर शेर हो।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से जब पूछा गया कि मध्य प्रदेश में बहुमत से चूकने की स्थिति में कांग्रेस सपा और बसपा को कैसे साथ लाएगी और साथ ही मुख्यमंत्री किसे बनाएगी, तो राहुल ने ये कहा।
विचारधारा एसपी बीएसपी की कांग्रेस की एक है, उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से अलग है, तो वो तो बात है। चीफ मिनिस्टर की मतलब कोई बड़ी इशू नहीं आने वाली है, वो काफी स्मूथली हो जाएगा।
राहुल गांधी ने कहा कि इन चुनावों में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वादा खिलाफी से नाराज होकर वोट दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी नीतियों में विफल रही और जनता ने उसके खिलाफ वोट दिया है। राहुल ने साफ किया कि पार्टी आगे भी रोजगार और किसानों के मुद्दे को लेकर ही आगे बढ़ेगी।
सेंट्रल मुद्दे रोजगार और किसानों की जो समस्या है, ये सेंट्रल थीम है, और ये सिर्फ मध्य प्रदेश का मुद्दा नहीं है, ये हर प्रदेश का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है, और इसके लिए हमको स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और ये सोच समझकर एक नया देश को विजन देना पड़ेगा। ऑपोजिशन, आपने कल मीटिंग देखी होगी, बहुत स्ट्रांगली यूनाइटेड है और एक साथ लड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर पैरालाइज से हैं, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड, ही इज अनएबल टू टेक द प्रेशर That is coming from the opposition.
कांग्रेस की ओर से कर्ज माफी के वायदे पर राहुल ने कहा कि जहां पार्टी ने किसानों के कर्ज माफ करने का वायदा किया है, वहां जैसे ही सरकार बनेगी कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुलदीप मिश्र, बीबीसी दिल्ली।
नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस को जीत की मुबारकबाद, हम विनम्रता से जनता का फैसला स्वीकार करते हैं। उन्होंने लिखा कि मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें अपनी सेवा का मौका दिया। जीत और हार जिंदगी का एक हिस्सा है, ये नतीजे हमें लोगों के लिए और देश के विकास के लिए बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम में रुख करते हैं राजस्थान का, जहां अब वसुंधरा राजे की सरकार के जाने का वक्त है। यहां भाजपा को 73 सीटें मिली हैं, लेकिन यहां कांग्रेस के लिए आज मुश्किल फैसला लेने का दिन है। कांग्रेस के सामने सवाल है कि आखिर वरिष्ठ अनुभवी नेता अशोक गहलोत को प्रदेश की कमान सौंपे या फिर युवा चेहरे सचिन पायलट को। सुनिए राजस्थान से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
पार्टी कार्यकर्ता जब जीत के जश्न में डूबे हुए थे, कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री के चुनाव में सहमति बनाने का रास्ता खोज रहे थे, क्योंकि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक उनकी बुलंदी का नारा लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ पायलट समर्थक उनकी हिमायत में नारे लगा रहे थे। एक के पास तजुर्बा और नजरिया है, तो दूसरी तरफ जोश जुनून और ऊर्जा है। पार्टी हाईकमान ने नतीजे आते ही पर्यवेक्षकों को जयपुर भेज दिया है। पार्टी के अनुसार पर्यवेक्षक केसी वेणुगोपाल नव निर्वाचित विधायकों से आज राय लेंगे। इसके लिए आज विधायक दल की बैठक होगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार इसके बाद हाईकमान की रजा से नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। पर क्या यह इतना आसान होगा? विश्लेषक प्रोफेसर राजन महान कहते हैं,
मुश्किल तो जरूर होगा क्योंकि दोनों जो प्रमुख दावेदार हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हों और चाहे सचिन पायलट हों, दोनों के खुद ने तो अभी तक मैच्योरिटी दिखाई है, खुल के कोई आपस में लड़े नहीं है, लेकिन दोनों के जो समर्थक हैं उनको अब संभाल पाना, क्योंकि ये लड़ाई जो अब तक अंदरूनी रही है कहीं वो बाहर उभर के नहीं आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं खींचतान चले। लेकिन ये देखते हुए कि 6 महीने बाद अब लोकसभा के भी चुनाव, तो कांग्रेस को शायद बेहतर ये होगा कि वो उन कैलकुलेशंस को देखे कि 6 महीने बाद किसको मुख्यमंत्री बनाने से राजस्थान में ज्यादा सीटें आ सकेंगी।
कांग्रेस नेता आज राजभवन जाकर राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजे ने पद छोड़ने के बाद अपनी सरकार के कामकाज पर संतोष व्यक्त किया और कहा, बीजेपी विपक्ष की सार्थक भूमिका का निर्वाह करेगी।
इन 5 वर्षों के अंदर बहुत अच्छे अच्छे विकास और गौरव के काम किए हैं और मुझे आशा है कि ये काम और ये योजना जो हम लोगों ने चलाए थे उनको आगे ले जाने का काम आने वाली सरकार करेगी। मैं सब प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम उनकी आवाज बनकर विधानसभा के अंदर बैठेंगे, उनकी बातों को उठाने का काम करेंगे।
प्रेक्षक कहते हैं, कांग्रेस इससे भी बेहतर जीत हासिल कर सकती थी। कांग्रेस नेता मुमताज मसीह कहते हैं, अगर कहीं चूक हुई है तो बाद में मंथन किया जाएगा।
देखिए, चूक की बात तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, मंथन करेंगे, लेकिन हाँ ये है कि अच्छी बात ये है कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है।
चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन ये अब दावेदारी का दौर है। कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार है तो कोई मंत्री पद का तलबगार है, क्योंकि हर दावेदार जनता की सेवा करना चाहता है और उसके लिए शायद पद जरूरी है। नारायण बारेट, BBC जयपुर।
230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए पूरी रात मतगणना चलती रही। कभी कांग्रेस आगे रही तो कभी भाजपा। सवेरे 6 बजे तक भी 5 सीटों के नतीजे साफ नहीं हुए और अभी इस वक्त भी 3 सीटों के नतीजे नहीं आए हैं। लेकिन इससे पहले आधी रात को कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए राज्यपाल को चिट्ठी लिखी। इस सियासी ड्रामे की पूरी रिपोर्ट सुनिए हमारे सहयोगी शुरय नियाजी से।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जो देखने को मिला उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। प्रदेश में हुए चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही के बीच करीबी मुकाबला देखा गया। वहीं आधी रात में कांग्रेस के नेता मीडिया के सामने आए और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बताया कि पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है और अब प्रदेश में नए युग की शुरुआत हो गई है।
ये मध्य प्रदेश की विकास यात्रा का एक नया इतिहास शुरू होने वाला है और हमने राज्यपाल जी को पत्र लिखा है कि हमें आमंत्रित करें ताकि हम अपनी बहुमत उनको साबित कर पाए।
उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पार्टी की जीत पर खुशी जाहिर की और कहा,
जो हमारे किसानों का खून पूर्व की सरकार ने मध्य प्रदेश की धरती में डाला था, उनको रवाना करने के बाद उन आत्माओं को शांति मिल पाए, ये हमारा उद्देश्य था।
इससे पहले रात में कमलनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को एक पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा था, लेकिन राजभवन ने उन्हें जब तक पूरे परिणाम आधिकारिक तौर पर ना आ जाएं तब तक रुकने के लिए कहा था। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की संभावना ज्यादा है। राजनीतिक विश्लेषक मनीष दीक्षित ने बताया,
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। जो इंडिपेंडेंट जीते हैं इस चुनाव में उनकी संख्या 5 है और 5 में से 4 इंडिपेंडेंट वो हैं जो कांग्रेस छोड़कर बागी होकर लड़े थे चुनाव। इसका मतलब है वो 4 में से आधे या 3 तो वापस कांग्रेस के साथ ही जुड़ेंगे। और सबसे अहम बात इसमें ये भी है कि सपा और बसपा जो बाकी 3 सीटें बच रही हैं, 4 इंडिपेंडेंट हैं और 3 सीटें बच रही हैं, उसमें 2 BSP ले जा रही है और 1 सपा ले जा रही है। तो सपा और बसपा नेचुरल अलाइन नहीं है बीजेपी के साथ, क्योंकि यूपी इलेक्शन में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगर वो यहाँ पर बीजेपी से अलायंस कर लेते हैं। अगर मान लो कभी शॉर्ट होता है मेजोरिटी से अगर वो शॉर्ट पड़ते हैं और अगर जरूरत पड़ती है उनकी के दूसरे दलों की मदद चाहिए तो SP BSP दे वोंट गो विद बीजेपी।
चुनाव परिणाम आने के बाद यह साबित हो गया कि 15 साल से जारी भाजपा के शासन का अंत मध्य प्रदेश में हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथ में पिछले 13 साल से सत्ता की कमान थी जो अब खत्म होने पर आ गई है। शुरह न्याजी, BBC News भोपाल।
मध्य प्रदेश के संबंध में जो ताज़ा जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार 230 सीटों वाली विधानसभा के 227 सीटों के नतीजे आ गए हैं। कांग्रेस को 112 सीटों पर जीत मिली है और दो पर वो आगे चल रही है। भाजपा को 108 सीटें मिली है और एक पर वो आगे चल रही है। बसपा को दो, सपा को एक और चार सीटें निर्दलीय नेताओं के खाते में गई हैं। कार्यक्रम में अब चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस को 90 में से 68 सीटों पर जीत मिली है, यानी उसे पूर्ण बहुमत मिला है। निवर्तमान मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हार की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
तीन बार चुनाव जीते थे, उस चुनाव जीतने की मुख्यमंत्री के नाते मुझे क्रेडिट मिला था, तो आज यदि हम चुनाव हारे हैं तो उसकी नैतिक जवाबदारी भी डॉक्टर रमन लेता है और इसके लिए मैं जवाबदार हूं। अब एक नई भूमिका में उतने ही प्रखरता से उतनी मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करने का जो अवसर मिलेगा उस पे हम छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करेंगे।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब अपना मुख्यमंत्री चुनने की कवायद में जुट गई है। सुनिए आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने अक्टूबर में जब छत्तीसगढ़ में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक ली तो उन्होंने छत्तीसगढ़ की 90 में से 65 प्लस सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा था, लेकिन मंगलवार को चुनाव के परिणाम उल्टे ही निकल गए। पिछले चुनाव में महज 39 सीटें लेकर आने वाली विपक्षी दल कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। एक तरफ जहां किसानों के मुद्दे पर चुनाव लड़कर सत्ता में पहुंचने वाली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भूपेश बघेल का स्वाभाविक चेहरा है, वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत और सांसद ताम्रध्वज साहू भी मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे हैं। पार्टी के प्रभारी पीएल पुनिया का दावा है कि बैठकों के रास्ते से बात बन जाएगी।
जैसे कि हमेशा जो हमारी कांग्रेस पार्टी की परंपरा है कि चुने हुए प्रतिनिधि इकट्ठे होंगे और वो अपनी राय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाई कमांड को बता देंगे और वो इंगित करेंगे, उसके हिसाब से प्रस्ताव होगा, वो प्रक्रिया कल से प्रारंभ हो जाएगी।
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भूपेश बघेल भी मुख्यमंत्री पद के सवाल को टालते नजर आए।
छत्तीसगढ़ के जनता ने लड़ाई अपने हाथ में ले ली थी, संगठन के माध्यम से लड़ाई लड़े, पूरा श्रेय संगठन को जाता है। ये विषय हाई कमान का है, हाई कमान जो जिसको भी जिम्मेदारी देंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा।
लेकिन कांग्रेस के सामने एक बड़ी जीत का श्रेय है तो कई चुनौतियां भी हैं। अगले चार महीनों के भीतर लोकसभा का भी चुनाव होना है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को एक और परीक्षा की तैयारी से गुजरना होगा। राजनीतिक मामलों की जानकार डॉक्टर अनुपमा सक्सेना कहती हैं,
लोकसभा चुनावों के पहले ये जीत कांग्रेस के लिए मौका भी है और चुनौती भी है। किसानों को किए गए वायदों को वो किस तरह पूरा करते हैं, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वो किस तरह से नीतिगत निर्णय लेते हैं, ये सारी चीजें देखनी होगी।
अनुपमा सक्सेना मानती हैं कि आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों के मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी को नए तरीके से विचार करना होगा।
जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का जो अंधाधुंध दोहन हो रहा है और जनजातियों को जिसका फायदा अपेक्षित नहीं मिल पाया है, वहां पर एक ऐसा औद्योगिक विकास का मॉडल जो जनजातियों के लिए फ्रेंडली हो, इसके लिए कांग्रेस क्या करती है, ये सारी चीजें देखनी होगी।
चुनाव के समय राज्य के 43 लाख किसानों से कांग्रेस ने कई वादे किए थे। राजनीतिक विश्लेषक विक्रम सिंघल का कहना है कि किसानों से जुड़े मुद्दों को हल करके ही कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए जा सकती है।
धान खरीदी का समय चल रहा है, किसानों ने इनके वायदे पर भरोसा कर धान रोक कर भी रखा, तो सबसे पहले तो इन्हें 10 दिन के अंदर कर्ज माफी करनी है जो राहुल गांधी का वचन है, और दूसरा इन्हें कि समर्थन मूल्य तुरंत इसी बार इसी फसल में 2500 रुपए देना है। अगर ये दो काम कर लेते हैं तो फिर इन्हें 2019 के लक्ष्य को देखते हुए आगे काम करना होगा।
फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने राज्य में अपनी सरकार के गठन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को पर्यवेक्षक बनाया है जो आज रायपुर पहुंचने वाले हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। इसके समानांतर कांग्रेस पार्टी ने अपने उन दावों और वादों की फेहरिस्त भी बनानी शुरू कर दी है जिसे इस पखवाड़े तक अंजाम दिया जा सकेगा। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
इस बार के विधानसभा चुनाव इसलिए अहम माने जा रहे हैं क्योंकि कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। बीबीसी संवाददाता पंकज प्रियदर्शी ने वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव से बात की और पूछा कि इन चुनावों में कांग्रेस को जो कामयाबी मिली उसका 2019 के लोकसभा चुनावों पर क्या असर होगा, साथ ही राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर ये नतीजे क्या इशारा करते हैं।
2014 के मुकाबले जब हम आज और इन परिणामों के बाद विश्लेषण करते हैं तो बीजेपी काफी कमजोर विकेट पे नजर आती है 2014 के मुकाबले। अब विपक्ष के साथ कितने कमजोर विकेट पे है, किसका पलड़ा भारी रहेगा, दैट इज वाई वी आर सेइंग कि गेम इज ऑन। क्या ऐसा हो सकता है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके विपक्ष में बैठना पड़े, क्योंकि बीजेपी की अलाइज जोड़ने की क्षमता पिछले 4-4.5 साल में और घटी है। और अभी तो पासवान जी को देखिए क्या करते हैं, वो तो सबसे बड़े बेलवेदर है।
संजीव ये बताइए कि राहुल के लिए इन चुनाव के नतीजे कितने मायने रखते हैं।
देखिए राहुल गांधी का इन चुनावों में क्या योगदान था, सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने जिन भी स्टेट्स में, जैसे मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के नाम पे वोट नहीं पड़े, लेकिन मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने यह सुनिश्चित किया कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया बाय एंड लार्ज मिलकर काम करें। फिर भी अंदरूनी लड़ाई तो थी, लेकिन एक ओवरऑल एटमॉस्फियर जैसे कांग्रेस में इन फाइटिंग का बनता है वो इस बार मध्य प्रदेश में नहीं नजर आया। दिग्विजय सिंह की इतनी आलोचना हुई लेकिन पर्दे के पीछे सबसे ज्यादा प्रबंधन का काम दिग्विजय सिंह ने किया, जितने बागी उम्मीदवार ये वो रेबल्स का मैनेजमेंट, वो नर्मदा यात्रा निकाली पहले से, तो एक यूनाइटेड फाइट रही। छत्तीसगढ़ में आप देखिए किस तरह से माहौल बनाया, और राजस्थान में जरूर अशोक गहलोत सचिन पायलट के डिफरेंसेज रहे जिसको नहीं सुलझा पाए राहुल गांधी, लेकिन एक युवा और एक अनुभव का सामंजस्य बैठाने की कोशिश की। तो राहुल गांधी को मैं इस बात का श्रेय दूंगा कि उन्होंने पार्टी को एकजुट रखा है, खुद का उस तरह का करिश्मा नहीं है कि अपने नाम पे वोट डाल सके, लेकिन वो दिन भी चले गए कहते हैं ना जब वो कौन से मियां फाकता उड़ाया करते थे कि अब राहुल को पप्पू कहना, मजाक उड़ाना, उसकी हंसी करना, ये करना वो करना, ये चीजें काउंटर प्रोडक्टिव होने लग गई हैं। एक समय था कि आप राहुल का मखौल उड़ा के अपने को बड़ा 30 मार्का सिद्ध कर सकते थे, लेकिन अब आप जितना राहुल का मखौल उड़ाएंगे उतने कहीं ना कहीं आप ही अगर हास्य के नहीं तो एक इस बात के तो पात्र बनेंगे कि भाई अपने विपक्ष को सम्मान नहीं करते, आप उसको जगह नहीं देते, क्योंकि उसने अपनी जगह बना ली है। अब वो खुद अपने नाम पे वोट लेने के काबिल इंदिरा गांधी की तरह या जवाहरलाल नेहरू की तरह या राजीव गांधी की भी तरह अभी नहीं बन पाया, लेकिन पार्टी एक उसके पीछे एकजुट होकर खड़ी हो गई है ये तो तय है, और वो समझदारी के निर्णय ले रहा है ये भी तय है। एक इन नतीजों की बात यह है कि 80s में इंडियन 70s में इंडियन हॉकी टीम थी ना, बड़ा अच्छा खेलती थी लेकिन पेनल्टी कॉर्नर नहीं कन्वर्ट कर पाती थी। उसी तरह से कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा है वो फिनिश नहीं कर पाता है गेम को। मतलब राजस्थान में 125-130 सीट मिलनी चाहिए थी, एमपी में से बेहतर नतीजा आना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में फिनिशिंग जबरदस्त हुई, मतलब वेव थी वहां पे
जिसका अंदाजा
नहीं था। हाँ, तो जो फिनिश है, मतलब वो जो एक किलर इंस्टिंक्ट है या जो वो ढांचा है, या चाहिए कहिए संसाधनों की कमी है, पैसा नहीं है अभी कांग्रेस के पास, तो वो अगर उन्होंने अपना एक्ट घर नहीं संभाला, सही नहीं किया, तो 2019 में भी जो गोल है उनका, लक्ष्य की मोदी को हराना है, वो फिर एक बार ख्वाब बन के रह सकता है।
इसके बरक्स एक सवाल ये कि नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए इन चुनावी नतीजों का क्या मतलब है।
अभी भी नरेंद्र मोदी को मैं देश का नंबर 1 लीडर मानता हूँ, सबसे ज्यादा लोकप्रिय लीडर आज की तारीख में भी नरेंद्र मोदी है, लेकिन नरेंद्र मोदी जब सबसे चरम पे थी लोकप्रियता तब भी बीजेपी 31-32% वोट पे सिमट गई थी। अब जब वो नंबर 1 लोकप्रिय है लेकिन 2014 के अनुपात में उनकी लोकप्रियता काफी गिरी है अभी, मतलब वो उनकी अनडिस्प्यूटेड जो एक जगह थी इंडियन पॉलिटी में बीच में 2-1 साल के लिए बन गई थी, 2013 से लेकर 2017 यूपी इलेक्शन तक अनडिस्प्यूटेड नंबर 1-10 थे नरेंद्र मोदी, आज नहीं है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव, उनसे बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता पंकज प्रियदर्शी। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी को समर्थन नहीं देगी, साथ ही बीजू जनता दल ने भी साफ किया है कि वो ना तो भाजपा के साथ है ना ही कांग्रेस के साथ। बीजेडी नेता नवीन पटनायक ने क्या कहा सुनिए।
These states are predominantly agrarian states.
नवीन पटनायक का कहना था कि जिन राज्यों में भाजपा हारी है वो राज्य कृषि प्रधान राज्य हैं और केंद्र की मोदी सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों को नजरअंदाज किया है। मैंने पहले भी कहा है कि हम भाजपा और कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर नवीन पटनायक के इस बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अब चलते चलते एक नजर आज के अखबारों पर। अखबारों के साथ विकास त्रिवेदी स्टूडियो में पहुंच गए हैं। विकास, बताएं चुनाव के नतीजों के बाद या उनके साथ और क्या क्या खबरें हैं अखबारों में?
चुनाव की खबरें हर अखबार की पहली खबर है और मतलब सभी अखबार पूरे पन्ने पे हैं। और इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने राहुल गांधी के पोस्टर पर फूल बरसते हुए तस्वीर को छापा है और इसी अखबार ने एक विश्लेषण छापा है। दोनों दो तीन अखबार हैं जिन्होंने विश्लेषण छापा है इन चुनावी नतीजों को 2019 के लोकसभा चुनावों से जोड़ते हुए। तो इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर है उसमें वो लिखा है कि अगर यही माहौल रहा तो 2019 के चुनावों में इन तीनों राज्यों में बीजेपी 31 सीटें खो सकती है। अमर उजाला अखबार की बात करें तो उसकी हेडिंग है कि भाजपा का विजय रथ थमा, कांग्रेस को मिली संजीवनी। एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि कांग्रेस बीते चुनाव में जब भी हारती थी या बीजेपी की तरफ से जब उसको चुनावी मंचों से घेरा जाता था तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही जाती थी। तो अब अखबारों ने भी जो वर्ड प्ले होता है उस कांग्रेस मुक्त को कांग्रेस युक्त कर भारत में
शब्दों का खेल, कांग्रेस मुक्त की बजाय अब कांग्रेस युक्त सरकार की बातें की जा रही है।
इसके अलावा अगर बात करें जो राहुल को नामदार करके अक्सर चुनावी मंचों से निशाना साधा जाता था तो एनबीटी ने हेडिंग दी है नामदार को उनके आगे इनामदार कांग्रेस कर दिया है। और दैनिक भास्कर की हेडिंग है कि मोदी की नोटबंदी के बाद जनता की वोट बंदी। इसमें दो चीजें जो मेंशन करने वाली हैं कि दैनिक भास्कर अखबार कांग्रेस का 3.0 वर्जन कह रहा है इस जीत को और एनबीटी 2.0, तो वर्जन में भी अलग अलग फर्क है। हिंदुस्तान टाइम्स की हेडिंग है हैंड ऑन हार्टलैंड। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर शक्तिकांत दास को बनाए जाने की खबर को पहले पन्ने पर छापा है। इसके अलावा अमर उजाला अखबार में अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो वहां पे विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक बयान आया है और वो आया है कि चुनाव के नतीजे राम भक्तों की आस्था राम भक्तों का अस्थाई मोह भंग है। राम भक्तों ने सरकार को संकेत दे दिया। बीते कुछ दिनों में राम मंदिर को लेकर कई आंदोलन भी हुए थे।
जी, एक खबर जनसत्ता में भी है जो शेयर बाजार से जुड़ी है। अखबार लिखता है कि भाजपा की बड़ी हार टलने पर शेयर बाजार ने राहत की सांस ली। अखबार का कहना है रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफा देने के बावजूद देश के शेयर बाजार में मंगलवार को वैसी अफरा तफरी नहीं मची जिसके कयास लगाए जा रहे थे।
इसके अलावा हिंदुस्तान अखबार की एक खबर है कि दिल्ली सरकार ने कोर्ट से ये सूचित किया है कि खर्चीली शादियों में मेहमानों की संख्या सीमित करने में और ऐसे समारोहों में खान पान की बर्बादी को रोकने के लिए एक नीति तैयार की जाए, उस पर वो विचार कर रही है, उसको कुछ वक्त दिया गया है।
अखबारों की समीक्षा के लिए शुक्रिया विकास त्रिवेदी। और अब चलते चलते खेल की खबरें।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने आईसीसी की बल्लेबाजी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक का स्थान बरकरार रखा है। वहीं चेतेश्वर पुजारा शीर्ष पांच बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं जबकि जसप्रीत बुमराह गेंदबाजों में अपनी सर्वश्रेष्ठ 33वीं रैंक हासिल करने में सफल रहे। पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में 123 और 71 रनों की पारियां खेली जिनसे वो बल्लेबाजी रैंकिंग में जो रूट और डेविड वार्नर को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। पुजारा तीसरे नंबर पर काबिज स्टीव स्मिथ से 55 अंक पीछे हैं। वहीं भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया भले ही हार गया लेकिन उसके पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का मानना है कि पर्थ में 14 दिसंबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान टीम का पलड़ा भारी रहेगा। भारत ने एडिलेड में पहले टेस्ट मैच में 31 रन से जीत दर्ज कर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई है। ये पहला मौका है जब भारत ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर पहला टेस्ट मैच जीता। पोंटिंग के मुताबिक पर्थ की नई पिच ऑस्ट्रेलियाई टीम के अनुकूल है लेकिन टीम को जल्द से जल्द वापसी करनी होगी। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और अब जाने से पहले श्रोताओं को बता दें कि मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर नतीजे अभी भी नहीं आए हैं। कांग्रेस 2 सीटों पर अभी आगे चल रही है और 112 सीटों पर वो जीत चुकी है। भाजपा 108 सीटें हासिल कर चुकी है, 1 सीट पर फिलहाल वो आगे चल रही है। और कार्यक्रम के आखिर में अब सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर विकास त्रिवेदी से।
बीबीसी समाचार। भारत के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। फ्रांस के शहर स्थासबो में क्रिसमस बाजार के पास गोलीबारी की घटना हुई है। हमलावर ने भीड़ पर गोलियां चलाई जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हुई और 12 लोग घायल हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि पूर्व कनाडियाई राजनयिक मिशेल कोवरिक को हिरासत में लिए जाने पर वो चीन से जवाब चाहते हैं। कुछ दिन पहले ही चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे की एक शीर्ष अधिकारी को कनाडा में हिरासत में लिया गया था जिन्हें अब जमानत दे दी गई है। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाए जाने की फंडिंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े तेवर अपनाए हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों के सामने सीनेट और हाउस डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर और नैन्सी पोलोसी से कहा कि सीमा सुरक्षा के लिए वो जितना फंड चाहते हैं अगर वो नहीं मिला तो वो सरकार का कामकाज रोक देंगे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला दीपक जसरोटिया ने। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के पन्ने के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।